एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
नमस्कार, ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे रोमन विचारक और राजनेता की दुनिया में उतर रहे हैं जिनके विचार सदियों से गूंजते रहे हैं, मार्कस टुलियस सिसरो।
हाँ, सिसरो एक ऐसा नाम जो इतिहास में बार बार आता है।
बिल्कुल, और हमारे एक श्रोता ने हाल ही में उनके बारे में कुछ पढ़ा और पूछा कि आखिर ये आज भी इतने प्रासंगिक क्यों हैं।
और ये सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि सिसरो सिर्फ मतलब एक राजनेता या बहुत अच्छे वक्ता ही नहीं थे, वो उससे कहीं ज्यादा थे।
अच्छा, किस तरह से?
वो एक तरह से एक पुल जैसे थे यूनानी दर्शन और जो पश्चिमी राजनीतिक सोच है उसके बीच, या कह लीजिए गणराज्य के जो आदर्श थे और जो उस वक्त तानाशाही की हकीकत बन रही थी उसके बीच।
तो चलिए इसी पुल पर जरा चलकर देखते हैं, सिसरो का दौर वो था क्या ऐसा? रोम के इतिहास का कौन सा वक्त था वो?
देखिए, वो वक्त उथल पुथल का था, बहुत ज्यादा बदलाव, हिंसा। सिसरो का जीवन काल है 106 ईसा पूर्व से 43 ईसा पूर्व।
यानी रोमन गणराज्य का बिल्कुल आखिरी दौर।
हाँ बिल्कुल, गणराज्य अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। आप सोचिए, गृहयुद्ध चल रहे हैं, पोम्पी जूलियस सीजर जैसे बड़े बड़े जनरल हैं, वो अपनी ताकत के लिए लड़ रहे हैं।
माहौल तो काफी तनाव वाला रहा होगा।
बहुत ज्यादा राजनीतिक हत्याएं हो रही थीं, अनिश्चितता थी, ऐसा लग रहा था कि गणतंत्र खत्म हो जाएगा और तानाशाही आ जाएगी।
ऐसे माहौल में विचारों की, दर्शन की क्या जगह थी? रोमन तो मतलब अपनी व्यावहारिकता के लिए जाने जाते हैं ज्यादातर।
हाँ ये बात सही है, रोमन काफी प्रैक्टिकल लोग थे, लेकिन उसी दौर में यूनानी दर्शन की हवा भी रोम पहुंच रही थी, खासकर जो वहां का अभिजात वर्ग था उनमें।
जैसे कौन से विचार?
जैसे स्टोइकवाद है, एपिकुरियनवाद है और अकादमिक संशयवाद। इन पर बातें हो रही थीं, बहस हो रही थीं, और सिसरो खुद भी प्लेटो, अरस्तु और स्टोइक दार्शनिक पैंटिनियस से प्रभावित थे।
और उनके समय के बड़े नाम कौन थे? सीजर, पोम्पी तो थे ही।
हाँ, जूलियस सीजर, पोम्पी द ग्रेट, मार्क एंटनी, क्लियोपेट्रा भी थी उसी दौर में, केटो द यंगर, ऑक्टेवियन जो बाद में ऑगस्टस बना, मतलब बड़े बड़े नाम थे, दुनिया बदल रही थी।
और इसी बदलते रोम में सिसरो का उदय होता है। सुना है वो नोवस होमो थे, इसका क्या मतलब है?
नोवस होमो मतलब नया आदमी, यानी अपने परिवार में वो पहले व्यक्ति थे जो सेनेट तक पहुंचे थे।
ओह, तो ये आसान नहीं रहा होगा उनके लिए।
बिल्कुल नहीं, वो रोम के बाहर अर्पिनम से थे, परिवार अमीर तो था, अश्वारोही वर्ग का, लेकिन पारंपरिक राजनीतिक परिवारों जैसा रसूख नहीं था।
तो उन्होंने ये सब कैसे हासिल किया?
अपनी शिक्षा के दम पर और अपनी जबरदस्त प्रतिभा के दम पर। उन्होंने कानून पढ़ा, बयानबाजी यानी रिटोरिक सीखी, दर्शन पढ़ा, और सिर्फ रोम में ही नहीं, वो एथेंस और रोड्स भी गए, वहां के बड़े बड़े यूनानी गुरुओं से सीखा।
और फिर अपनी भाषण कला, अपनी वकालत के लिए मशहूर हुए। कहते हैं रोम में उनसे बड़ा वक्ता कोई नहीं था।
उनकी वाक्पटुता तो कमाल की थी, लोग कहते हैं कि जब वो बोलते थे तो सब मंत्रमुग्ध हो जाते थे। और इसी के दम पर वो राजनीति में ऊपर चढ़ते गए। 63 ईसा पूर्व में वो कौंसिल बने।
कौंसिल यानी सबसे ऊंचा पद?
हाँ, रोमन गणराज्य का सर्वोच्च निर्वाचित पद। ये उनके करियर का शिखर था, और इसी साल उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया।
वो क्या था?
उन्होंने कैटलीन नाम के एक रईस की साजिश का पर्दाफाश किया। वो सरकार का तख्ता पलट करना चाहता था।
ओह,
सिसरो ने सीनेट में इतने जबरदस्त भाषण दिए कि वो साजिश नाकाम हो गई, और इसके लिए उन्हें पेटर पैट्रिया की उपाधि मिली।
पेटर पैट्रिया यानी?
यानी राष्ट्रपिता।
वाह, ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन जैसा आपने कहा, दौर उथल पुथल का था, तो शिखर पे टिके रहना मुश्किल रहा होगा।
बेहद मुश्किल। उनका राजनीतिक जीवन उतार चढ़ाव से भरा रहा। जो कैटलीन के साथी थे उन्हें सिसरो ने बिना मुकदमे के मौत की सजा दे दी थी।
बिना मुकदमे के?
हाँ, उनका तर्क था कि गणराज्य को बचाने के लिए ये जरूरी था, लेकिन ये कदम गैर कानूनी माना गया, और बाद में इसी वजह से उन्हें रोम से निर्वासित भी होना पड़ा।
अच्छा, तो उन्हें देश निकाला भी झेलना पड़ा।
हाँ, कुछ समय के लिए। वो हमेशा गणराज्य को बचाने की कोशिश करते रहे, कभी पोम्पी का साथ दिया, कभी सीजर की बढ़ती ताकत को रोकने की कोशिश की। वो लगातार राजनैतिक संतुलन साधने में लगे रहे।
और फिर सीजर की हत्या हुई 44 ईसा पूर्व में, तब उन्हें लगा होगा कि शायद अब गणराज्य बच जाए।
हाँ बिल्कुल, उन्हें एक उम्मीद जगी थी, उन्हें लगा कि अब गणतंत्र को फिर से मजबूत किया जा सकता है, और इसी उम्मीद में उन्होंने मार्क एंटनी के खिलाफ बोलना शुरू किया।
मार्क एंटोनी।
हाँ, उन्होंने एंटोनी के खिलाफ अपनी मशहूर फिलिपिक्स भाषण श्रृंखला दी। उन भाषणों में उन्होंने एंटोनी को गणराज्य के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया।
ये तो बड़ा साहसी कदम था।
बहुत। ये भाषण उनकी वाक्पटुता और हिम्मत का सबूत है, लेकिन यही उनके अंत का कारण भी बने।
कैसे?
क्योंकि एंटोनी चुप बैठने वालों में से नहीं था। उसने ऑक्टेवियन और लेपिडस के साथ मिलकर दूसरी त्रिमूर्ति बनाई, मतलब तीन लोगों का शासन।
और फिर?
और उन्होंने अपने दुश्मनों की एक लिस्ट निकाली, प्रोस्क्रिप्शन लिस्ट कहते थे उसे। उसमें जिन लोगों के नाम थे उन्हें कोई भी मार सकता था।
ओह, और सिसरो का नाम?
सिसरो का नाम उस लिस्ट में सबसे ऊपर था। एंटोनी उनसे खास तौर पर नाराज था।
तो फिर क्या हुआ?
एंटोनी के सैनिकों ने उन्हें ढूंढ निकाला। 43 ईसा पूर्व में उनकी हत्या कर दी गई। एक तरह से वो अपने आदर्शों के लिए, गणराज्य के लिए शहीद हो गए।
ये तो बहुत दुखद अंत है, पर उनकी विरासत उनके भाषणों और राजनीति तक ही तो सीमित नहीं है, उन्होंने लिखा भी तो बहुत कुछ है।
हाँ बिल्कुल, उनका लेखन बहुत महत्वपूर्ण है और उसमें उनके जीवन के अनुभव, उनके विचार सब झलकते हैं।
उनकी कुछ खास किताबों के बारे में बताइए।
जिसे उन्होंने वक्ता या ऑरेटर कैसा होना चाहिए, इस पर लिखा डे ओ रैटोरे। इसमें वो कहते हैं कि अच्छा वक्ता सिर्फ बोलना जानने वाला नहीं होता, उसे जानकार और नैतिक भी होना चाहिए, एक तरह से दार्शनिक राजनेता।
और दर्शन पर?
दर्शन पर उनका शायद सबसे मशहूर काम है डे ऑफिशियस, यानी कर्तव्यों पर। ये उन्होंने अपने बेटे को सलाह के तौर पर लिखी थी। ये व्यवहारिक नैतिकता पर एक गाइड जैसी है कि पब्लिक और प्राइवेट लाइफ में सही क्या है, हमारे कर्तव्य क्या है। ये स्टोइक विचारों से बहुत प्रभावित है।
स्टोइक विचार मतलब?
मतलब कर्तव्य, तर्क, प्रकृति के अनुसार जीना, भावनाओं पर नियंत्रण रखना। सिसरो ने इन विचारों को रोमन संदर्भ में ढाला।
और उनके राजनीतिक विचार, कोई आदर्श शासन प्रणाली बताई उन्होंने?
हाँ, अपनी किताब डे रिपब्लिका, यानी गणराज्य पर। इसमें उन्होंने मिश्रित संविधान का समर्थन किया।
मिश्रित संविधान, ये क्या होता है?
उनका मानना था कि सबसे अच्छी सरकार वो है जिसमें तीन चीजों का संतुलन हो, लोकतंत्र, आम लोगों की थोड़ी भागीदारी, अभिजात तंत्र, कुशल और अनुभवी लोगों का शासन, और राजतंत्र, एक मजबूत कार्यकारी।
दिलचस्प।
उन्हें लगता था कि रोमन गणराज्य ऐसा ही था।
हाँ, अपने सबसे अच्छे रूप में।
हालांकि वो देख रहे थे कि उनके समय में ये संतुलन बुरी तरह बिगड़ रहा था। सीजर और पॉम्पी जैसे लोग सारी ताकत अपने हाथ में ले रहे थे।
तो अगर हम उनके योगदान को देखें तो क्या हम कह सकते हैं कि वो यूनानी दर्शन को रोमनों के लिए आसान बना रहे थे, या वो खुद भी कोई मौलिक विचारक थे?
देखिए, ये एक बहस का मुद्दा है। ज्यादातर लोग मानते हैं कि वो प्लेटो या अरस्तु जैसे मौलिक दार्शनिक नहीं थे, लेकिन उनकी असली प्रतिभा कहीं और थी। उन्होंने यूनानी दर्शन के जो मुश्किल विचार थे, स्टोइकवाद, संशयवाद, उन्हें लिया और बहुत ही साफ, सुंदर और व्यवहारिक लैटिन भाषा में पेश किया। उन्होंने दर्शन के लिए लैटिन में शब्द गढ़े। ये बहुत बड़ा काम था। इसके बिना शायद ये विचार पश्चिमी यूरोप तक पहुंच ही नहीं पाते। वो एक लाजवाब सिंथेसाइजर थे, विचारों को जोड़ने वाले और उन्हें पहुंचाने वाले।
और उनके अपने मुख्य दार्शनिक जोर किस पर थे?
दो बातें बहुत अहम हैं। एक तो है प्राकृतिक कानून का विचार,
नेचुरल लॉ।
हाँ, कि कुछ नैतिक सिद्धांत हैं जो यूनिवर्सल हैं, वो तर्क पर आधारित हैं और इंसानों के बनाए कानूनों से भी ऊपर हैं। ये विचार बाद में पश्चिमी कानून और नैतिकता का आधार बना।
और दूसरा?
दूसरा, जैसा हमने कहा, मिश्रित संविधान और कानून का शासन, कि सत्ता किसी एक के हाथ में नहीं होनी चाहिए, शक्तियों का बंटवारा जरूरी है।
आपने अकादमिक संशयवाद का भी जिक्र किया था, उसका क्या मतलब था उनके लिए?
उसका मतलब था कि वो किसी एक फिलॉसफी के कट्टर समर्थक नहीं थे। वो मानते थे कि भाई, किसी भी चीज के बारे में 100% निश्चित होना मुश्किल है।
अच्छा,
तो हमें अलग अलग विचारों को सुनना चाहिए, परखना चाहिए, और जो सबसे ज्यादा ठीक लगे, सबसे ज्यादा व्यवहारिक लगे, उसे मानना चाहिए। इससे वो थोड़े खुले दिमाग के बने रहे, कट्टर नहीं हुए।
ये दिलचस्प है कि कैसे उन्होंने यूनानी विचारों को रोमन व्यवहारिकता से मिलाया। जैसे आपने स्टोइक बात के बारे में कहा कि यूनानी स्टोइक तो अक्सर दुनिया से दूर रहने की बात करते थे।
हाँ बिल्कुल, वो कहते थे कि अंदरूनी शांति के लिए पब्लिक लाइफ से हट जाओ।
लेकिन सिसरो ने इसे बदला।
कैसे?
उन्होंने स्टोइकवाद को रोमन मूल्यों के हिसाब से ढाला। उन्होंने कहा कि असली गुणों, असली सुख एकांत में नहीं है, वो समाज की सेवा करने में है, सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रहने में है, सबकी भलाई, कॉमन गुड के लिए काम करने में है। उनके लिए दर्शन सिर्फ सोचने की चीज नहीं थी, जीने का तरीका था, एक जिम्मेदार नागरिक का तरीका।
समझ गए। तो अब आते उनकी विरासत पर, उनका असर कितना गहरा रहा, कितना दूर तक फैला। उनका असर तो असीम रहा है। आप सोचिए, मध्य युग में उन्हें टली के नाम से जाना जाता था, वो लैटिन गद्दे का स्टैंडर्ड बन गए थे।
अच्छा।
हाँ, फिर ईसाई विचारक आए जैसे संत ऑगस्टिन, थॉमस एक्विनस। उन्होंने सिसेरो के प्राकृतिक कानून के विचारों को लिया और ईसाई धर्मशास्त्र का हिस्सा बना दिया। ऑगस्टिन ने तो लिखा है कि सिसेरो की एक किताब पढ़कर ही वो दर्शन की तरफ मुड़े थे।
और पुनर्जागरण काल में पेट्रार्क वाली बात क्या है?
हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण है। 14वीं सदी में पेट्रार्क ने सिसेरो के कुछ निजी पत्र खोज निकाले जो खो गए थे।
ओ।
और उन पत्रों से पुनर्जागरण के मानवतावादियों को बहुत प्रेरणा मिली। सिसेरो उनके हीरो बन गए, एक ऐसा इंसान जो विद्वान भी है, कमाल का वक्ता भी है और समाज में सक्रिय भी है। पेट्रार्क की ये खोज अक्सर पुनर्जागरण की शुरुआत मानी जाती है।
ये तो बहुत बड़ी बात है। और क्या ये सच है कि अमेरिकी संविधान बनाने वालों पर भी उनका असर था?
बिल्कुल सच है। जॉन एडम्स, थॉमस जेफरसन, जो अमेरिका के फाउंडिंग फादर्स थे, वो सिसेरो को बहुत पढ़ते थे और मानते थे।
किन विचारों का असर था?
वही मिश्रित सरकार का विचार, शक्तियों के बंटवारे का, प्राकृतिक अधिकारों का, कानून के शासन का। इन सब विचारों ने अमेरिकी संविधान की नींव रखने में मदद की।
कमाल है, एक प्राचीन रोमन विचारक के विचार एक नए देश के जन्म को दिशा दे रहे थे।
हाँ, यही उनकी विरासत की ताकत है।
उनके कुछ कथन, कुछ कोट्स जो आज भी याद किए जाते हैं।
कई हैं, एक तो बहुत मशहूर है, ओ टेम्पोरा ओ मोरेस।
इसका क्या मतलब है?
ओ ये कैसा जमाना है, ओ ये कैसे रीति रिवाज हैं। ये उन्होंने कैटलीन वाली साजिश के वक्त सीनेट में कहा था, अपने समय के नैतिक पतन पर दुख जताते हुए।
ये तो आज भी इस्तेमाल होता है।
हाँ बिल्कुल, जब भी लोग समाज में गिरावट देखते हैं ये याद आता है।
और कोई शासन से जुड़ा हुआ?
एक और जरूरी है, सालोस पोपिली सुप्रीमा लेक्स एस्तो।
थोड़ा मुश्किल है।
मतलब है जनता का कल्याण ही सर्वोच्च कानून हो। ये उनके दे लेगी भूस यानी कानून पर किताब से है। ये गणतंत्रवाद का, रिपब्लिकनिज्म का मूल सिद्धांत है
कि सरकार का पहला काम जनता की भलाई है।
एग्जैक्टली, किसी राजा या शासक का हित नहीं बल्कि आम लोगों की भलाई। ये आज भी लोकतंत्र का आधार है।
एक और सुना है मैंने, शायद उनका ही है, किताबों के बिना कमरा आत्मा के बिना शरीर जैसा है।
हाँ, ये कथन अक्सर सिसेरो से जोड़ा जाता है। पक्का नहीं है कि उन्होंने ही कहा था, पर ये उनके ह्यूमैनिटास के विचार से जरूर मेल खाता है।
ह्यूमैनिटास?
हाँ, मतलब सीखना, साहित्य पढ़ना, बौद्धिक रूप से खुद को बेहतर बनाना, इंसानियत का विकास।
लेकिन सिसेरो की सिर्फ तारीफ ही होती है या आलोचना भी?
नहीं नहीं, आलोचना भी हुई है और होनी भी चाहिए, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता।
क्या आलोचना है?
उन पर आरोप लगता है कि वो बहुत अहंकारी थे, घमंडी थे, राजनीतिक रूप से कई बार अस्थिर दिखे, मतलब कभी इस तरफ कभी उस तरफ। और जैसा हमने कहा, कैटलीन के साथियों को बिना मुकदमे के सजा देना वो एक बहुत विवादास्पद कदम था, भले ही उन्होंने कहा कि ये जरूरी था।
और दार्शनिक रूप से?
दार्शनिक रूप से, जैसा हमने बात की, उन्हें मौलिक विचारक कम और यूनानी विचारों को फैलाने वाला ज्यादा माना जाता है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उनके गणराज्य के विचार में आम आदमी की जगह बहुत सीमित थी, वो ज्यादातर अभिजात वर्ग के हितों की बात करते थे।
उनके जीवन से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से भी तो होंगे।
हाँ है, जैसे उनका नाम सिसेरो।
ये लैटिन शब्द सिसर से आया है।
सिसर? हाँ, हाँ। जिसका मतलब होता है चना।
चना क्यों?
कहते हैं उनके किसी पूर्वज की नाक पर चने जैसा मस्सा या निशान था, तो जब सिसेरो राजनीति में आए, दोस्तों ने कहा भाई ये नाम बदल लो, मजाक उड़ेगा।
हाँ, अजीब तो है।
लेकिन सिसेरो ने मना कर दिया। उन्होंने कहा मैं इसी नाम को रोम के सबसे बड़े खानदानों से ज्यादा मशहूर बना दूंगा, और उन्होंने कर दिखाया।
वाह, ये तो आत्मविश्वास की बात है।
और उनकी मौत से जुड़ा वो खौफनाक किस्सा।
हाँ, वो वाकई बहुत भयावह है। जब एंटनी के सैनिकों ने उन्हें मार डाला तो उनका सिर और उनके हाथ काट लिए गए।
ओ खुदा।
और उन्हें रोम के फोरम में उसी मंच पर लटका दिया गया, रोस्ट्रा पर, जहां से सिसेरो ने अपने सबसे शानदार भाषण दिए थे।
ये तो बहुत क्रूरता है।
हाँ, और कहते हैं कि एंटनी की पत्नी फुल्विया ने बदले की भावना से सिसेरो की कटी हुई जीभ में अपनी हेयरपिन चुभोई थी, क्योंकि सिसेरो ने एंटनी के खिलाफ इतने तीखे भाषण दिए थे। ये विरोधियों को डराने का एक भयानक तरीका था।
रोंगटे खड़े हो गए सुनकर।
तो इन सब बातों को अगर समेटें तो सिसेरो को हम कैसे याद रखें? एक असफल राजनेता, एक महान विचारक, एक दुखद हीरो।
शायद वो ये सब कुछ थे, थोड़ा थोड़ा। देखिए, एक राजनेता के तौर पर वो अपने अंतिम लक्ष्य यानी गणराज्य को बचाने में असफल रहे।
हाँ, ये तो सच है।
लेकिन एक विचारक, एक लेखक, एक वक्ता के तौर पर उनकी सफलता, वो अविश्वसनीय है। उन्होंने यूनानी दर्शन को लैटिन दुनिया तक पहुंचाया और उसके जरिए पूरी पश्चिमी सभ्यता तक।
और उनके विचार?
उनके विचार नागरिक कर्तव्य, कानून का शासन, बहस और संवाद का महत्व, वाक्पटुता, ये आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं।
उनका जीवन खुद ही उनके दर्शन जैसा लगता है। मतलब तर्क और कानून से आजादी बचाने की कोशिश एक ऐसे समय में जब हिंसा हावी हो रही थी, शायद उनकी शहादत ने उनकी आवाज को और ताकत दे दी।
बिल्कुल, उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि एक आजाद समाज सिर्फ कानून या संस्थाओं से नहीं चलता।
तो फिर किससे चलता है?
उसे सक्रिय, नैतिक और सोचने समझने वाले नागरिकों की जरूरत होती है, जो सार्वजनिक जीवन में हिस्सा लें, बहस करें और जो सही है उसके लिए आवाज उठाएं। सिसरो दिखाते हैं कि विचारों का और कर्म का कितना गहरा रिश्ता है।
और यहीं पर एक सवाल उठता है जिस पर शायद हमारे श्रोता भी सोच सकते हैं। आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में जहां हर तरफ जानकारी ही जानकारी है,
हाँ,
वहां गहन विचार और सक्रिय सार्वजनिक जीवन, इन दोनों के बीच क्या तालमेल होना चाहिए? क्या ज्ञान और दर्शन सिर्फ हमारी अपनी शांति के लिए हैं, या एकेडमिक चर्चाओं के लिए, या फिर सिसेरो की तरह उसे समाज को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए? क्या कहते हैं?
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।